हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं श्री श्री राधा राधिकारमन मंदिर में। और अभी जो है हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठें और मोबाइल फ़ोन भी जो है उसको भी वाइब्रेशन मोड पे या साइलेंट मोड पे रखें। हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये अंतिम जो है चैप्टर है और अपने अंतिम श्लोकों में है ये भगवद गीता इस समय। और जैसे कि लास्ट वीक भी हमने बताया था और जनरली जो जितने भी लोग अभी लेक्चर दे रहे हैं गीता पर उससे बता रहे हैं कि आखिरी में हम लोग इस भगवद गीता में भगवान की फाइनल इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं। और फाइनल इंस्ट्रक्शंस हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि शुरू में दी जाए। और उसका हमने एक बार उदाहरण भी दिया था कि जैसे कि अगर कोई बात बोली जाए तो बात पूरी सुनी जाए तो उसका ज़्यादा फायदा है, और अगर पूरी बात नहीं सुनते तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इधर भगवान जो हैं इस भगवद गीता के 18th चैप्टर के 72 वर्स में, इस श्लोक में और 71 में बहुत सुंदर ढंग से, इससे पहले भगवान ने 18वें अध्याय में काफ़ी चीज़ें बताई और अभी श्रद्धा के विभाग इत्यादि। तो जो लोग पिछले हफ्ते से जो वीक में एक बार आते हैं या रेगुलर नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे से बता दें कि क्या चल रहा है। भगवान ने अब वो नॉलेज बताई है, गुह्य ज्ञान बोला जाता है सीक्रेट नॉलेज को, और उसमें भी गुह्या, गुह्यतर और गुह्यतमम। एक तो है सीक्रेट, दूसरा है उससे ज्यादा ऊंचा सीक्रेट बोले तो सीक्रेट से मोस्ट सीक्रेट हो गया एंड देन मोस्ट सीक्रेट हो गया। तो तीन तरह की नॉलेज बताई भगवान ने। और उसके बाद इतना भी कहा इससे पिछले श्लोकों में, यह गुह्य ज्ञान जो ये जो टॉप सीक्रेट है उनको कभी भी ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं। जैसे कि हम श्रीमद मॉर्निंग में जब मंगला आरती आते हैं तो हम लोग भगवान के 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, और उसमें बताया जाता है कि अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी एक ऑफेंस है। लेकिन हम लेते हैं कि इस संस्था के द्वारा तो जिनमें श्रद्धा है चाहे नहीं है, क्वालिफाइड है चाहे नहीं है, हम लोग प्रचार करते रहते हैं। किस लिए? वास्तव में एक ऑफेंस है लेकिन इसके बावजूद भी प्रचार किया जाता है, सब लोगों को हरि नाम दिया जाता है, बताया जाता है इसके बारे में, ताकि किसी न किसी तरह जो बद्ध जीव है ये अपनी जो एक कंडीशनिंग जो बन चुकी है उसकी इस मटीरियल वर्ल्ड में रहने की, एक रूटीन लाइफ जीने की, उससे बाहर निकले। और उससे बाहर निकल के ये समझे, क्योंकि भगवान के जहाँ पर इस नियम का उल्लंघन हो रहा है कि अष्टाध्यायियों को ना बताया जाए, तो वहीं पर एक नियम का पालन भी हो रहा है कि भगवान के जो नाम हैं उसमें इतनी शक्ति बताई गई है कि बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति इसको एक बार अपने कानों से सुन भी ले तो उसके जीवन के इतने पाप समाप्त हो जाते हैं जितने कि वह जीवन में कर भी नहीं सकता। तो भक्त लोग अपनी लाइफ को जो है खतरे में डालकर, अपने भजन को खतरे में डालकर प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि जो भक्त लोग हैं उन्हें समझ आ चुका है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, इस संसार में कितनी समस्याएं हैं। और अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम ना पड़े कि उसके जीवन का असली लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बेचारा इस जीवन भर इस जीवन में दुखी ही रहेगा, परेशान ही रहेगा, और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और ऐसे लोगों के पास जाएगा जो खुद भी परेशान है, और ऐसे लोगों से आशा करेगा कि आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं सुखी कैसे रहूं, मैं शांत कैसे रहूं, मेरे घर में सुख शांति कैसे आए। तो इस प्रकार भगवान जो है इस भगवद गीता में हम लोगों को बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ऐसे लोगों को ना दे जो इस सीक्रेट में बता रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भगवान कह रहे हैं अगले श्लोकों में, ऐसे पिछले श्लोकों में जो कंक्लूड किया भगवान ने और कहा कि अगर कोई व्यक्ति चार कामों को करता है, कौन से चार काम बताए? अभी चार काम आप देख सकते हैं कि कोई भी कहीं भी कर लेता है। जैसे भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो, कि आप जो है अपना मन मुझ में लगाइए। बड़ा मुश्किल है, हम प्रयास करते हैं लगाने का क्योंकि हमारे पास इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या लोग बताते हैं कि कि प्रभु जी हम लोग तो एक मिनट भी भगवान के सामने जो बैठते हैं पूरे दिन में एक मिनट ही प्रयास करते हैं हाथ जोड़कर आंखें बंद करने का, उसमें भी जो है मन कहां जाता है, दूसरे विषयों की ओर जाता है, बिल्कुल लगता नहीं भगवान। अब बताइए 24 घंटे हमको मिले हैं एक दिन में, उस 24 घंटे में हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं क्या? किसकी भक्ति करते हैं? धन की भक्ति करते हैं। पूरा दिन हम लोग मनी कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है ना, और किसी न किसी तरह केवल ये सोचते रहते हैं कि मैं एंजॉय कैसे करूं, मैं एंटरटेनमेंट कहां करूं। तो हमारी सारी सेंसेस केवल इसी ओर दौड़ रही होती है सुबह से लेकर शाम तक। और फिर जब हम लोग एक मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, अब आप बताइए उसमें क्या दिखना चाहिए? वही सब तो दिखना चाहिए जिसका हम लोग 23 घंटे और 59 मिनट्स जिसका चिंतन है, स्मरण किया है। तो फिर जो एक मिनट हमने लगा भी दिया तो उसका रिजल्ट तो ठीक आएगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा कीर्तन करो, लेकिन किस तरह? सततम। सतत का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़कर नहीं? सतत का क्या मतलब होता है? सतत का मतलब होता है रोज, और रोज में भी ऐसा नहीं कि एक घंटा, उसमें 24 घंटे आ गए। सतत का मतलब कि हर समय मेरा कीर्तन करो। अब ये सुनकर कई लोग कहेंगे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऑफिस नहीं जाना है ना, ये अपना भी तो काम है, खाना भी तो बनाना है, स्कूल भी तो जाना है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगती। लेकिन उसके बावजूद भगवान ने अर्जुन को बताया, उसका रास्ता भी बताया कैसे करना है, और अर्जुन ने कर भी दिखाया केवल एक एक सेशन के बाद। कौन सा सेशन था? जो कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध से पहले भगवान ने केवल एक सेशन दिया 45 मिनट्स का, और वो भी सॉन्ग स्टाइल में दिया, एक गाना सुनाया जिसको बोलते गीत भगवान का, द सॉन्ग ऑफ गॉड। क्या है वो? भगवद गीता। और इस गीता में, कन्वर्सेशनल गीता है, इसमें अर्जुन भी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, अब ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे हैं, तो इस तरह कैसे कर सकते हैं, मन को कंट्रोल करना है तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, योग में से हो नहीं सकता। तो फिर भगवान को अर्जुन ने कहा, अर्जुन को कहा भगवान ने कि अपने मन को आप मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को और अपने मन को मुझे अर्पित कर दो, उससे क्या होगा, और उसके बाद अपने कर्म को करो। तो हम अगर अपने मन और अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करते हैं, और इस शरीर से हम बेशक अपनी ड्यूटीज का पालन करते हैं, तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं इससे आपको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। दूसरा, अभी जब भगवान आखिरी में बोल रहे हैं कि मन मना भव मत भक्तों, कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ और मेरी पूजा करो, ये चार शिक्षाएं दी भगवान ने कि मुझ में अपना मन लगाइए, मेरे भक्त बनिए, जैसे हम लास्ट टाइम चर्चा की थी भक्त बनने का मतलब क्या है, कि अपने सारे कामों को छोड़कर आप मंदिर आ जाइए, नहीं, भक्त बनने का मतलब क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने की जो 64 विधियां हैं उसमें भी सर्वश्रेष्ठ 9 हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठा नव विधा भक्ति। रूप गोस्वामी जी ने, जो कि हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने भक्ति की 64 टाइप ऑफ लिम्स बताए हैं जिसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं, जो कि पार्ट्स है, लाइक तिलक लगाना, वैष्णव वेशभूषा पहनना, भगवान के सामने नृत्य करना, कीर्तन करना, इस तरह की बड़ी सारी चीजें। तो उन्होंने कहा इन 64 में जो सबसे ज्यादा मोस्ट टॉप मोस्ट है वो है 9, नवदा भक्ति, जिसमें श्रवण अर्थात भगवान के विषय में सुनना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, अर्चन, इस प्रकार। तो उन नवदा भक्ति में भी फिर बताया गया कि नाम संकीर्तन, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और इन 9 के बीच में भी जो टॉप मोस्ट है वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का मतलब हुआ कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। बताइए 64 को एक कैप्सूल में दे दिया हमको, क्या आप केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए या जप कीजिए, आपको जो है 100% मिल जाएगा इससे। तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनने का मतलब क्या है? इस संसार में विशेषकर जितने लोग भी धर्म के नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो हमने कई बार बता चुके हैं, जितना भी रेशियो है भक्ति करने वालों का, उसमें भी जितना रेशियो आएगा या जो भी परसेंटेज आएगा, उसमें भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम परसेंटेज लोगों को यह मालूम ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका फल क्या है, क्या चीज, क्या क्या बोला, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है और क्यों कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हम जो रिचुअल करते हैं भक्ति का, अनुष्ठान करते हैं, या जितना भी हमने फिक्स किया हुआ है उतना करते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या। तो जब इस प्रकार का प्रश्न कोई आता है तो सच में एक बार सोचने को लगता है कि हाँ हम करते क्या है। हाँ, एक मंत्र तो दिया था उन्होंने, वो भी करता था, वो भी करती थी, तो मैं भी कर रही हूं या मैं भी कर रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, उसका फायदा क्या, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा। तो मैंने बताया कि उन डिवोटीज में भी एक बहुत बड़ा रेशो है जिन लोगों को मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उससे लाभ क्या है हमको। तो इतने सारे जो लोग कर रहे हैं, हाँ उसका एक फायदा जरूर होता है कि ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको उसको करने से, उस डिवोशनल रिचुअल को करने से कुछ स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं या पुण्य इकट्ठे होते हैं, और उन पुण्य के बेसिस पर वो प्रमोट होता है आगे, ताकि कल को वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच सके जहां से कि वो भक्ति कर सके। तो गलत नहीं है जो भी कर रहे हैं, हाँ ये है कि उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि किस रूप में करते हैं, इग्नोरेंस में करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, तो भक्ति का मतलब क्या है, ये भक्ति अर्थात भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के धाम के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में, भगवान के रूप के विषय में, और वो दर्शन जो भगवान ने दिया है गीता है भागवतम इत्यादि में, उसका चिंतन या उसका श्रवण करना। तो इसको भक्ति का एक अंग बोला गया। फिर भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान का गुणगान करना, ये लोग तो बहुत ही कम जानते हैं, ये ऋषि बिल्कुल ही खत्म है, लोगों को बिल्कुल भी गुणगान नहीं आता। एक आरती सीखी हुई है ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी खाली डिमांड्स है, मुझे ये दे दो, कष्ट हटे तन का मन का, सुख संपत्ति घर आवे, है ना, मेरा क्या लागे सब तेरा, देते कुछ भी नहीं है। तो एक इस प्रकार की बचपन से एक आरती सीखी हुई है, और जब जब कभी घर में कुछ ऐसा अनुष्ठान होता है तो इमीडिएटली कर लेते हैं, और दिवाली के दिन भी करते हैं, किसकी, लक्ष्मी जी की, बड़ी फेवरेट है सबकी, वो बाजारों में हर जगह लक्ष्मी गणेश जी बैठे हैं, ठीक है ना जी, और सब लोग सोने चांदी में भी गिफ्ट कर रहे हैं लक्ष्मी। तो लोगों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, वो एक आरती की बुक भी लेकर आनी पड़ती है, फिर घर में सबको इकट्ठा होना पड़ता है, फिर वो एक आरती भी गानी पड़ती है लक्ष्मी जी की, है ना, कि कम से कम आज तो गा लें। और फिर उस दिन कहते हैं दीप भी मत बुझाओ, क्या होता है उससे, फिर क्या कहते हैं लक्ष्मी इधर उधर से निकल रही हो तो हमारे घर में देख लें, तो कम से कम यहां पर तो बौछार कर दे धन की। तो जब लक्ष्मी जी को अकेले पूजा जा रहा होता है बिना नारायण के, तो लक्ष्मी वास्तव में घूम रही होती, और उनकी सवारी कौन है, उल्लू, तो अपने उल्लू पे घूम रही होती है और वो नीचे देख रही होती हैं कौन कौन से लोग हैं जो मेरी अकेले पूजा कर रहे हैं, तो वो उल्लू पर बैठ के आती है और उल्लू बना के चली जाती है। क्योंकि जो धन, कितनी अजीब बात है कि धन लक्ष्मी को हम पूज रहे हैं बिना उनके हस्बैंड के, कितनी अजीब बात है। आप किसी को घर में बुलाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर खड़े हैं, आपको ही आई प्लीज, लक्ष्मी जी अंदर हो, दरवाजा बंद कर दो, आपकी जरूरत नहीं है, है ना, ना लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और ना नारायण प्रसन्न होंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर उनके पति को हम लोग उनकी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी तो सदैव उनके चरणों में रहती है, तो उनको अपने आप ही आना पड़ेगा, क्योंकि शी इज अ चेस्ट वुमन, वो बड़ी ही पतिव्रता है और सदैव अपने पति के चरणों में रहती है। और जो गलत ढंग से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए धन मांगते हैं, तो उनको धन मिल भी जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा आप लोगों के घर में भी होता होगा, वो कुछ ना कुछ मांगता रहता ना, कुछ भी गलत चीज मुंह में डाल देगा, है ना, जो पेन आएगा पेन इधर उधर मारने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक सॉकेट में अंगली डालेगा, है ना, अब वो बोल रहे मुझे जो करना करने दीजिए, और पेरेंट्स क्या करते हैं उसको दूर ले जाते हैं, वहां से दूर हटाते हैं, क्योंकि सच्चे पेरेंट वही हैं जो बच्चे का भला चाहे। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, और जो भी मांगते हैं उससे हमारा नुकसान होता है। बच्चे के हाथ में चाकू आ गया, क्या करेगा, वो खुद को काटेगा या दूसरे को काटेगा, ब्लेड आ गया तो इसका भी काम करेगा, गन आ गई खेलते खेलते हाथ में, क्योंकि टीवी देखा है बचपन से, इसमें इसको दबाने से कुछ होता है, हाँ, तो उसने दो तीन बार दबा दिया तो पता चले घर में कोई आवाज ही नहीं आ रही, सब लोग लेटे हैं। तो अगर हम लोग कुछ भी मांगते हैं तो उससे हमारा नुकसान होता है, हमें मालूम ही नहीं कि हम लोगों को क्या मांगना चाहिए और जो मांग लिया उसका सदुपयोग क्या है। तो जब हम लोगों को इस प्रकार धन प्राप्त होता है जो कि बिना नारायण की पूजा से हुआ है, तो जो हमने बताया कि उल्लू पर बैठ के आती है, उल्लू बना के जाती है, तो उस धन का दुरुपयोग क्या करते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है ठीक प्रकार से, तो हम लोग उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं। एक व्यक्ति दिन की 4 सिगरेट पीता था, अब क्योंकि पैसा आ गया कितनी पिएगा, अब तो पूछू मैं बेस्ट ब्रांड पिएगा, और कभी कभार एक पैक लगाता था, अभी क्योंकि धन अच्छा आ गया तो उसके ब्रांडेड और 20 साल पुरानी, ऐसे होता है 30 साल पुरानी उसके शोकेस में होंगी, और फिर क्योंकि धन ज्यादा है तो और कुछ नहीं करना है, और फिर होता क्या है कि उस धन का दुरुपयोग होता है सारे नियमों को तोड़ने में, ठीक है ना। अब उसको अपनी एक धर्म पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर वो वैश्यावृत्ति करने जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अब कई लोग तो ऐसे भी हैं जो शव होता ना, शव डेड बॉडी, उसको खाते हैं। सुना आपने, मनुष्य छोड़ो जानवर भी तो शव ही है जो मर जाता है, उसको भी उबाल उबाल के रोस्ट करके उस व्यक्ति को जीवन पेट में डालते हैं, तो फिर धन का दुरुपयोग होता है। और इस प्रकार दुरुपयोग से क्या होता है, हमारा जो बैंक अकाउंट है सिंफुल एक्टिविटीज का वो बढ़ता है। और अगर सोचे कोई बुद्धिमान हो वो सोचे मैंने क्या किया, क्या खाया, क्यों खाया, कारण क्या था, तो केवल एक माइंड में एक थॉट चल रहा था कि यस मुझे कुछ खाना है, जैसे कि सारी दुनिया खा रही है, मुझे अपने स्टमक को सेटिस्फाई करना है। कितनी अजीब बात है, हमने डिस्प्यूट में 500 गज का प्लॉट जीत लिया लड़ाई में, लेकिन अपने शरीर में 1 इंच की जीभ नहीं जीत सकती आज तक। वो जो बोलती है उसको वो खिलाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो मुंह में डाल रहे हैं जीव जो हमारी है उसके ठीक 1 या 1.5 इंच के एरिया के ठीक पीछे थोड़ा सा और एरिया में देखे तो वहां टेस्ट नहीं मालूम पड़ता, गले को भी टेस्ट नहीं मालूम पड़ता, पेट को वो नहीं मालूम पड़ता टेस्ट। और बताया गया कि डॉक्टर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि मांस तो मनुष्य के लिए बना भी नहीं, उसके शरीर की जो सब कुछ है उससे बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट कर सकता, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि बस खाना है। और फिर बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति इस प्रकार नियमों को तोड़ता है, जब इस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा करता है और केवल वो, तो उसका केवल नुकसान होता है। और लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति भक्त है, इन श्रवण कीर्तन इत्यादि का सब कुछ कर रहा है, तो उसको मालूम पड़ जाता है मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति जब ये समझ जाते हैं, और क्योंकि इंटेलिजेंस का काम ही है डिस्क्रिमिनेट करना व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, तो फिर वो केवल अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतारना प्रयास करता है और वही करने का प्रयास करता है। इसमें दिक्कत आती है शुरुआत में, हम लोग ठीक प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते और कई बार अपने मन के आधार पर सारे डिसीजन लेते हैं, तो उससे कई बार नुकसान होता है। लेकिन फिर भी गारंटी ये है क्योंकि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, अगर हमारी कंडीशनिंग ज्यादा है हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने फिर भी हरि नाम की शरण ग्रहण कर रखी है, भगवान के पवित्र नाम, भगवान की कथा इत्यादि का श्रवण कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी भक्ति करने। आप अगर कभी गए हो बॉम्बे तो वहां पर जो रेलवे चलता है वहां का ट्राम या बोले या जो भी सिस्टम है, तो बताते हैं वहां हजारों की संख्या में लोग उतरते हैं और हर 3 मिनट बाद या 7 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ट्रेन चलती हैं और फुल ऑफ क्राउड, आपको वहां पर अपना पैर खुद उठाने की जरूरत नहीं है, वो लोग धक्का मार के आपको अंदर ले जाते हैं और धक्का मार के आपको बाहर निकाल देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार जब हम लोगों को लगता है कि सब बड़ा मुश्किल है, ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, मीट तो मेरा फेवरेट है ना, मैं तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ ही नहीं सकता और बिना पिए तो मुझे नींद नहीं आती है ना, ऐसी समस्या रहती, लेकिन इस मंदिर से जुड़ने वाले लोग आप हैरान हो जाओगे, इन सारे नियमों को पालन करने लगते हैं कि वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जब आना शुरू करते हैं और जैसे ही उनकी जीवा पर भगवान अवतरित होते हैं, किस रूप में? अपने नामों के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार जब भगवान अवतरित होते हैं जीवा पर, तो उसके जीवा को, उसके मन को, उसके बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार अग्नि का काम है जलाना, उसी प्रकार भगवान का काम है शुद्ध करना। नाम लो चाहे दर्शन करो, शुद्ध करेंगे। तो इस प्रकार इन सारे नियमों का पालन करने लग जाते हैं, उनको बोला नहीं जाता। ऐसा बोर्ड देखा आपने कि केवल जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं वही इस्कॉन के अंदर आए? आपने पढ़ा कोई बोर्ड? ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा। या अंदर आते आपको गार्ड बोल रहा है, हाँ जी कितनी पीते हो, अच्छा इतनी, नहीं जी बाहर चलो, ऐसा भी नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे ही अंदर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, श्रवण इत्यादि करते हैं और भगवान के नाम का जप शुरू कर देते हैं, चाहे एक माला से करें, तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारे जो कलमश हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं और जो हमारे बैड इंटेंशंस और हैबिट्स हैं, वो अपने आप सीधे होने लगते हैं। अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चैंटिंग करते रहिए, अचानक आपको 5, 10, 15, 20 दो चार छह महीने बाद ऐसा लगने लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज मैं कर रहा हूं मुझे करनी नहीं चाहिए और हम छोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार भगवान जो है भक्त की हेल्प करते हैं। लेकिन होता क्या है, भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान ऐसे लोगों के लिए नहीं है। कैसे? जैसे कि हमारी ये क्वालिटीज हमारी ही क्वालिटी है, जैसे भगवान बोल रहे हैं ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कर लिए, कहीं भी कर लिए, कुछ भी खा लिया, कुछ भी देख लिया इमीडिएटली, तो ऐसे लोग इसको पचा ही नहीं पाएंगे सब चीजों। फिर वो लोग जो एकनिष्ठ नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, और ना उन लोगों को जो भक्ति में रत है, भक्ति से कोसों दूर चल रहे हैं, सीधा ये बोलते हैं भगवान होता ही नहीं है जी, हम तो नहीं मानते जी, पहले दिखाओ फिर मानेंगे। नहीं, आप रखो, आप घर में बैठो, भगवान को ऐसे कोई जरूरत नहीं है, एडवर्टाइज नहीं करना चाहते कि पहले मैं दिखाऊंगा तुम्हें, दर्शन दूंगा, उसके बाद मेरी भक्ति शुरू करना। उनके पास पहले बहुत भक्त हैं। कितने भक्त हैं मालूम है? पहले तो कम थे, लेकिन अब प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे संसार में होंगे, हर देश में भक्त हैं और फिर हर प्लैनेट में भक्त हैं उनके, इसके अलावा पूरे यूनिवर्स के अलावा और दूसरे यूनिवर्सेस में भक्त हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पहले भगवान आपको दर्शन दें उसके बाद आप भक्ति करोगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो ही गया मुश्किल। आपको जी, मैं तो जहां मर्जी गाड़ी चलाऊं, मैं किसी नियम को नहीं मानता। किसने बनाया नियम? कहते सरकार ने। पहले सरकार को मेरे सामने लाओ, मनमोहन सिंह को मेरे सामने लाओगे, मुझे दिखाओगे आदमी है ठीक है, तब करेंगे शुरू। ऐसे थोड़ी होते, मानो ना चाहे ना मानो, प्रकृति का नियम, सरकार का नियम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और आपको भेज दिया जाएगा आपके बड़े घर। तो यहां पर भगवान करें, और उनको भी ना बताएं जो मुझसे द्वेष करते हैं। कौन लोग द्वेष करते हैं भगवान से? जो लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में और एंजॉय करना चाहते हैं, और जब वो देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे चीज पर फेथ कर रहे हैं भगवान जैसी चीज पर, तो उनको बड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, और ऐसे लोगों से और भगवान से भी द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एनवीनेस। तो भगवान करें ऐसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नो प्रॉब्लम, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, भक्त बनाओ। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जब कृष्ण ने ये बात कही थी गीता में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो मिले उसे क्या कहो, कृष्ण का उपदेश दो। भगवान की इस टीचिंग को भगवान ने ही स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उसको कहा इसको डिस्कार्ड कर दो। अभी उल्टा हो गया, अभी कलयुग है, टाइम बड़ा कम है, उम्र बड़ी कम है, तो इमीडिएटली क्या करो, जो मिले उसे भगवान के विषय में बताओ। तो प्रभुपाद जी ने वही किया और पूरे संसार में भक्ति शुरू हुई, इतना इजी। और इस प्रकार भगवान फिर आगे भगवान ने बताया 68 में कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। अगर हम लोग कोई माध्यम बनते हैं भगवान के विषय में बताने के किसी दूसरे व्यक्ति को, तो हम भगवान के और प्रिय हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति है सड़क पर घूम रहा है अनाथ की तरह, रो रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परेशान है, और एक व्यक्ति आता है कहता है आपको पता है आप क्यों इस तरह घूम रहे हो? अरे आप तो अब मानी जी के लड़के हो, आपके सर पे चोट लगने के कारण भूल गए, लेकिन अब चलो। तो इस प्रकार हम लोग अगर माध्यम बनते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संतानों को उनसे मिलाने का, होता ना आप लोगों ने देखेंगे कई एडवर्टीजमेंट, अगर मेरे इन पुत्र को अगर कोई मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते तो गिव एज गिफ्ट 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज है ना, नहीं कोई तो दरियागंज में लोग नाम लिखाने जाते हैं है ना, तो ऐसी जगहों पर नाम लिखाते, तो भगवान बड़े खुश होते, गिफ्ट देना चाहते। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरे बारे में बताता है। और फिर कह रहे हैं अंत में वह मेरे पास आएगा, अंत में मेरे पास आने का मतलब है कि भगवान के उस धाम में एंटर कर जाएगा जहां से फिर कोई व्यक्ति लौट कर नीचे नहीं आता। अगले श्लोक में कह रहे हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। किसकी अपेक्षा? जो भक्तों को यह परम रहस्य बताता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी और हम सब लोग आत्माएं हैं और हम भगवान के अंश हैं। जब ये ज्ञान सबको दिया जाता है तो भगवान उस भक्त से ज्यादा खुश होते हैं। और फिर 70वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो मैं अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है और जो श्रद्धा समय, जो आज का श्लोक 71, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्या क्या कर दिया, क्या क्या खा लिया, क्या क्या आदतें पड़ गई, भगवान कह रहे हैं जैसे ही कोई मेरी शरण में आता है और फिर उसके जो मानसिक धर्म है या फिर उसकी जो और बैड हैबिट्स हैं या उसके और कहीं फेथ टिके हुए हैं, भगवान कह रहे हैं अगर कोई इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण करता है तो क्या होता है, मैं उससे क्या करता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं उसके सारे पापों को मुक्त कर देता हूं। वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, हायर प्लैनेट्स में जाता है एडवांस। और फिर आज के श्लोक में प्रभुपाद जी कुछ और बता रहे हैं तात्पर्य में, ये भी सुनने। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी इतना सुंदर बता रहे हैं कि कई बार इस तरह की टीचिंग्स को हमें यहां से बोलना पड़ता है, और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो डिवोटी हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ फर्स्ट टाइम आए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा मीडियम क्लास से भक्त हैं, तो फिर ऐसी जगह क्यों सुनाई जाए। यहां पर यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोक को प्राप्त करते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता, इस प्रकार भगवद भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना में को ग्रहण कर लेते हैं। यहां पर ये बड़ी सुंदर लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंगली ही हम लोग भक्ति में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में काफी भक्ति करी या फिर काफी पुण्य कर्म किए, काफी अच्छे काम किए, तो जब वो दूसरे परिवार में जन्म लेते हैं तो जहां पर भक्ति करी या जितनी तक भक्ति छोड़ी वहीं से उनकी भक्ति वहां से शुरू होती है, और पूर्व जन्म की भक्ति के कारण वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली एक ही लेक्चर से बदल भी जाते हैं या फिर कुछ लेक्चर से बदल जाते हैं या ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो भगवान के नामों की ओर आकर्षित होते हैं और भगवान के नाम को जपने लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में हमें तीन तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसे लोग जो बड़े मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं। मोड ऑफ गुडनेस में क्या है कि ऐसे लोगों को एक बार चीज समझाई जाए वो आसानी से समझ जाते हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुत ही कम है। दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो मोड ऑफ पैशन में है, जिनकी सेंस कंट्रोल में नहीं है, जो अभी और अधिक अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अदर कभी भगवान के भक्तों के मध्य में आकर, उनके बीच में आकर कहीं कथा इत्यादि का श्रवण करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, या इच्छाओं के द्वारा मंदिर में आते हैं लेकिन कथा इत्यादि श्रवण कर वो भी भक्त बन जाते हैं। उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आदतों से, अपने नियमों को पालन करने में, लेकिन लगातार श्रवण से, नित्यम भागवत सेवा अर्थात भागवतम इत्यादि का, भागवतम और भगवत गीता इत्यादि का श्रवण नियमित रूप से करने से उनके अंदर भी वही सब क्वालिटीज आ जाती हैं, अर्थात वो अपने आप को रजोगुण से, उस प्लेटफॉर्म से मोड ऑफ गुडनेस में, सतोगुण में ले आता है, और सतोगुण से इन सब चीजों को देखना समझना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी नियम को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। और फिर तमोगुण में जो लोग हैं उन लोगों पर कई बार कृपा हो जाती है, जैसे निर्गारी, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जंगल में जाके सब जीवों को तीर मारता था और अधमरा छोड़ देता था, वो बेचारे तड़पते हुए मरते थे, उसको बड़ी खुशी होती थी ये देखकर, क्योंकि फैमिली बिजनेस था, वो अपने घर वालों को खिलाने पिलाने के लिए सब कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ये कौन व्यक्ति है जो इनको शिकार तो कर रहा है लेकिन अधमरा छोड़ रहा है और उसके बाद ही तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति जो ये कर रहा है। तो देखा मृगारी था, उसको बुलाया, उसको कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते हैं क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे करना पड़ता है, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस प्रकार इन जीवों को मारना पड़ता है, इनको बेचकर, इनको वो कर मुझे अपना रोजगार चलाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जाओ आप जरा पूछो अपने परिवार वालों से, क्योंकि इस पाप कार्य में जो तुम लगे हो क्या इसका फल वो आपके साथ शेयर करेंगे इसका रिजल्ट। तो ठीक है मैं पूछा तो क्यों नहीं, उनके लिए कर रहा हूं तो क्यों नहीं करेंगे। तो घर गए, अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि जो मैं ये पाप काम करता हूं सुबह से लेकर शाम तक, इसका फल तुम भी तो मेरे साथ शेयर करोगी। वो कहती मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर सकती, आप करो जो करना है। कहते कमाल है, पिताजी से पूछा, माताजी से पूछा, सबने मना कर दिया, बच्चों से पूछा, कोई भी उनके पाप की रिएक्शन नहीं लेना चाहता। तो फिर सर लटका के वापस अगले दिन उस जगह पहुंचे तो नारद मुनि फिर पहुंचे, नारद मुनि ने कहा बोलो क्या आंसर मिला। कहते प्रभु सब मना कर रहे हैं, इन सारे किए गए पापों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। कहते हाँ, कहते लेकिन मुझे अपने परिवार को भी तो पालना है, वो भी तो मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा सब भगवान पर छोड़ दो, अगर मेरी बात पर विश्वास है छोड़ दो ये सब, पकड़ो ये माला और भगवान के नामों को जप करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान एक चींटी से लेकर एक हाथी तक को भोजन देते हैं रोज, कि तुम्हें भोजन नहीं देंगे क्या। कहते ठीक है मुझे क्या करना है। कहते गंगा के किनारे जाओ और भगवान के नाम का जप करो। उन्होंने भगवान के नाम का जप शुरू किया, गांव में बात फैलने लगी कि जो मिगारी है, जो कितना शिकारी था, क्रूर शिकारी था, वो अचानक बदल गया है। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो। कहते हाँ गंगा के किनारे में जाकर वो क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ऊंचे ऊंचे स्वर में। सब लोग देखने गए, हर गांव में खबर पहुंची, सब लोग वहां आए, सब लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा भक्त बन गया, तो सब ने कुछ ना कुछ देना शुरू कर दिया, कोई अनाज लाया, कोई फल लाया, कोई धन लाया। जब आंखें खोली तो उसने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया, इतना तो मुझे चाहिए नहीं था, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है, जब मृगारी जैसे जो तमोगुण में लोग हैं, जो केवल मांसाहार इस तरह की स्थिति में रहते हैं, एक शुद्ध भक्त के संग में आकर वो लोग शुद्ध हो जाते हैं और वो लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो भगवान के भक्त बनने में और प्रयास करने में कोई अंतर नहीं है, अगर हमारा प्रयास शुद्ध रूप से चल रहा है और एक शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति है तो इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जिस भी स्टेज पे है, गृहस्थ लाइफ में है या ब्रह्मचारी लाइफ में है या स्टूडेंट लाइफ में है या रिटायर्ड लाइफ में है, जहां पर भी हम लोग सुन ले, जब हमें ज्ञान मिल जाए तो तुरंत हमें शुरू कर देना चाहिए। और फिर जो गुरु के द्वारा, ये जो वक्ताओं के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको पूछना चाहिए, प्रश्नों को करना चाहिए और उसके बाद उनके द्वारा दी गई आज्ञा को पालन करना चाहिए। आज मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम ने बहुत सुंदर कथा बताई, उसमें ये था कि एक व्यक्ति ने नया नया गुरु धारण किया और न्यूफाइट स्टेज में था, कुछ ज्यादा पता नहीं था चीजें, तो गुरु के साथ चल पड़े। गुरु जी एक घोड़े पर चल रहे थे, शिष्य हाथ नीचे साथ साथ चल रहे थे, अचानक देखा गुरु जी आगे, प्यास लगी, कहा वो लोटा दो, तो उन्होंने कहा लोटा तो गिर गया पीछे। कहते तो उठाया क्यों नहीं, महाराज आपने कुछ बोला ही नहीं था। कहते ये क्या मतलब है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। कहते चुप। कहते ठीक है तो एक काम करो, मैं तुम्हें कई चीजें लिख कर दे देता हूं, जो जो घोड़े से गिरे उसको उठा लेना। कहते ठीक है। उन्होंने लिस्ट बनाई जो जो सामान था, और फिर सामान की लिस्ट लेकर चलने लगा। अचानक क्या हुआ, एक छोटा सा ड्रेनेज आया जहां से घोड़े को टापना था। उससे पहले रास्ते में चलते चलते अचानक क्या हुआ, अब जैसे हमें शंकाओं से निवृत्त होना था तो घोड़े को भी जो है उसने भी स्टूल पास किया। तो उसने कहा, अरे पहले गुरु महाराज ने उनको बोला सॉरी कि जो भी गिरे तो उसको उठा लेना। तो उसने क्या करा, गुरु जी की टोपी ली, उसी में सब कुछ इकट्ठा कर लिया। तो उसको कहा, बे बेवकूफ ये क्या कर लिया तुमने, ये सब क्या कर रहे हो? कहते आपने तो बोला जो भी घोड़े से गिरे उसको उठा लेना। कहते तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लिखकर दे रहे हो। तो सारे नाम सामान की लिस्ट बनाकर दे दी। अब फिर आगे चले तो थोड़ी मुश्किल क्या हुई, ड्रेनेज को क्रॉस करते हुए वो गुरु जी और घोड़े दोनों गिर गए। अब वो लिस्ट निकाल कर देने लगा है। कहते अरे उठाओ उठाओ। कहते महाराज नानी। कहते भाई बड़ा बेकार शिष्य ले लिया मैंने। तो कहने का क्या मतलब है कि शिष्य को होना चाहिए सार ग्राही। जब गुरु कुछ बताए, जब शिक्षक कुछ बताए तो उसको सार ग्रहण करना चाहिए कि अल्टीमेटली गुरु जी चाहते क्या है। ऐसा नहीं कि सारी चीज अपने मन से करें या जो इस तरह करें जैसे कि बोला गया। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सार ग्राही होना चाहिए कि अल्टीमेटली करना क्या है। उसी प्रकार इस संदेश का जो मतलब है हमें समझना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो अगर हम लोग इस छोटे से जीवन में वास्तव में, क्योंकि अगर देखें हम लोग भक्ति करने का कोई भी नुकसान नहीं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं, और इवन वो बोले या हमारे पर विपदा आ गई हो तो वास्तव में भक्तों के लिए वो भी कोई विपदा नहीं होती, क्योंकि डिवोटीज आर ऑलवेज ब्लिसफुल वेदर दे आर इन बैड सिचुएशन और इन गुड सिचुएशन। किसी भी अवस्था में भक्त केवल खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और फिर जो भक्त लोग नहीं है, जो अब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में भी उनको इतना आनंद आता है कि ऐसी सिचुएशन को ठीक प्रकार से टैकल कर लेते हैं। हम लोग सबकी लाइफ में क्या होता है, यही तो है ना कि आए ना आए दिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में ऐसी कई सिचुएशन आती है जब हमें बहुत सारा गुस्सा चढ़ता है। कई सिचुएशन आती है कई बार, और कई बार ऐसी होते हैं जब हमको फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी फील होती है, और कई बार ऐसा होता है कई शक्लें हमारे सामने ऐसे आ जाती हैं जिनको देखना पसंद नहीं करते, और कई बार ऐसे दुख भरे फोन आते हैं जिसके बाद हमारा पूरा दिन मूड ऑफ रहता है, और एक दो इंसिडेंट ऐसे आते हैं जब खुश भी होते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप शुरू करता है, वो सोच सकता है इन सारे दुखों का और भक्ति और नाम से क्या लेना देना। लेकिन हम ही समझ जाएं कि हम लोग ये जो भगवान के पवित्र नाम ले रहे हैं, ये शरीर को देखभाल करने के लिए नहीं ले रहे। ये शरीर के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके यहां फोड़ा हुआ अपने हरि नाम लिया गायब हो गया। ये तो हमारी आत्मा की खुराक है, ये तो हम लोग मतलब हमारी खुराक है। तो अभी हम 24 घंटे के लिए शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, और शरीर के कार्य करते हुए शरीर से संबंधित सारी चीजों से अटैच्ड हैं, इसलिए उन सब चीजों से हमें दुख हो रहा है या सुख महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये शरीर तो टेम्परेरी है, इस शरीर को छोड़कर हमें फिर दूसरे शरीर में जाना है, तो फिर हम लोग आत्मा के बेस पे काम करना शुरू करेंगे। और जब आत्मा के बेस पे शुरू करेंगे काम, तो हमको मालूम पड़ेगा कि आत्मा की जो खुराक है वो भगवान के नाम है। कौन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये आत्मा की खुराक है, और जब आत्मा का नरिशमेंट मिलता है तो आदमी अंदर से भी खुश होता है और बाहर से भी खुश होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हैं कि आप जो प्लेन में सफर करते हैं तो एयर हॉस्टेस जो 3.5 इंच की स्माइल देती है उसके पीछे क्या राज है, खुश है बहुत वो, उसको सैलरी मिल रही है अच्छी। जिस दिन से सैलरी में इंक्रीमेंट ना हो या ना मिले तो उसको जो स्माइल यू टर्न ऊपर को जा रहा है वो नीचे को आ जाएगा। तो यहां पर जो सुख और शांति और सुखी जो जीवन है हमारा, ये धन के ऊपर नीचे होने होने से ऊपर नीचे हो जाता हमारा। यहां पर हम छोटे छोटे संबंधों से, लोगों से, प्रॉब्लम से दुखी सुखी रहते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति का क्या मतलब है कि आप जितना ज्यादा जितना जल्दी भगवान के नजदीक जाते हैं, इस संसार से इस मटेरियल वर्ल्ड से आपका उतना नाता टूटता जाता है। नाता टूटने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपना घर बार छोड़ दिया, ये सब नाता टूटने का मतलब यह है कि आप अब हृदय से उन पर्टिकुलर रिलेशन से या चीजों से अटैच नहीं है। तो जब आप अटैच ही नहीं है तो फिर आप दुखी नहीं है, है ना। तो यहीं पर बैठे बैठे कई लोग जो है, कईयों की इंटरेस्ट किसी चीज में, कईयों की इंटरेस्ट किसी चीज में, तो जिसका इंटरेस्ट जिस चीज में उसको उतना दुख है, जिसका इंटरेस्ट किसी चीज में कम है या नहीं है वो सुखी है उस चीज में। तो ये समझते ही, ये समझने का प्रयास भी करना चाहिए, और समझते ही हमें तुरंत क्रिया शुरू कर देनी चाहिए। अब वेट नहीं करना चाहिए, पता चले वेट करते करते या टाइम पास करते करते टाइम आ गया। टाइम का दूसरा नाम क्या है? काल। टाइम पास कर रहे हैं अभी बस, और क्या, थोड़ा सा और हो जाए। लोग पूछते हैं कैसे है जी, कैसा चल रहा है, क्या बोलते लोग? टाइम पास हो रहा है, टाइम पास। आप थोड़ी टाइम पास कर रहे हो, ये घड़ी तो रोज वैसी चलती है, ये आपको पास कर रही है। और फिर ये टाइम चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, एक दिन हमारा हरि बोल हो जाएगा। और इस हरि बोल में हमारा नुकसान क्या होगा कि फिर एक और लाइफ, फिर एक परिवार में आएंगे, फिर मम्मी खड़ी होगी सर पर, कुछ खाना खिला रही होगी। जय करो, अभी से बच्चों को सिखाना चाहिए जय करो। तो फिर एक मम्मी है, फिर एक पापा है, एक परिवार का नया सेट है, और फिर उससे अटैचमेंट है, नहीं नहीं इनको कैसे छोड़ू, मेरी जिम्मेवारी बनती है। ओके, कर लो जिम्मेवारी पूरी। हुआ तो फिर एक बारी नारद मुनि ने दिवाली ऑफर में कहा, भगवान आप अपने भक्तों को क्यों नहीं बुला लेते, बेचारे क्यों सड़ रहे नीचे? कहते सड़ रहे, कहते मैंने अवतार ले लिया, मैंने अपने भक्तों को भेज दिया, गीता बोल दी पूरी, सब कुछ दे दिया, आप क्या करूंगा इनके साथ? कहते ये सब मुश्किल काम है, आप कुछ आसान से बोलो। कहते क्या बोलूंगा? कहते इनको आप ऐसे बुला लो। कहते जाओ तुम ले आओ। नारद जी आ गए नीचे। नारद जी आए, देखे एक बच्चा खेल रहा है छोटा सा, उसको कहा बेटा इधर आओ। कहते हैं जी। कहते मैं नारद मुनि हूं। कहते आप सुंदर, देखने सुंदर लग रहे थे। कहते प्रणाम नारद जी। कहते मैं आया हूं भगवान के धाम से, और मैंने आज भगवान से लड़ाई कर ली। मैंने उनको बोला मैं यहां से लोगों को डायरेक्टली लेके जाऊंगा ऐसे, है ना, मैं नहीं देख सकता लोगों को यहां सड़ते, बार बार जन्म के दुख लेते हुए, बीमारियों के दुख लेते हुए, बुढ़ापे के दुख, और फिर मरना, मैं से नहीं देखा जाता। तो मैं चाहता हूं कि वो सब लोग भगवान के धाम जाएं, जिस धाम में क्या है, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, ऐसे वृक्ष लगे हैं जिससे जो डिजायर करो पूरा हो जाता है। भगवान ने वहां पर वेणु कोणंतम अरविंद दाराय, भगवान ने मुरली पकड़ी हुई है, सुंदर वहां पर नृत्य हो रहे हैं, गान चल रहा है, वहां चलना भी नाचना है और बोलना भी संगीत है, और वहां पर बुरा नहीं होता, बीमार नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। कहते अच्छा, माय गॉड। कहते चलोगे? कहते क्यों नहीं, चलो। कहते आओ चलो। कहते एक मिनट। कहते क्या हुआ? कहते अभी तो होमवर्क रहते हैं और रिजल्ट भी आना बाकी है, तो रिजल्ट आ जाए उसके बाद चलते हैं। कहते अच्छा, तो कहते ठीक है। कहते कब आऊं? कहते भाई 4-6 महीने उसके बाद आ जाओ। बुधवार आए। कहते कैलाश अब चले? कहते हाँ हाँ अब तो चलना चाहिए, हो गया टाइम, रिजल्ट भी आ गया, पास हो गए, अच्छे मार्क्स थे, चलो जी। कहते एक मिनट। कहते अब क्या है? वो मुझे ना क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया है और उसमें मेरे को कैप्टन बनाया, तो पूरी टीम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो कहते बस ये कुछ मैचेस पूरे जोनल लेवल के हो जाए, उसके बाद तो मैं आपके साथ ही चलूंगा। कहते ठीक है, फिर आता हूँ थोड़े टाइम बाद। फिर थोड़े टाइम बाद वापस नारद जी आए। कहते अब तो चलो वापस। कहते नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी, अब मैं जो कॉलेज जाने लगूं, अब मेरे कई फ्रेंड्स हैं, है ना, तो मैं जो है थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद थोड़ा एंजॉय कर लूं, उसके बाद तो मैं आए आगे, फिर क्या करना, फिर जाए क्या, सब कुछ देख दिखा ले चलेंगे। उसके बाद नारद जी ने कहा ठीक है, मैं फिर बाद में आता हूं। तो नारद जी दोबारा आए। कहते प्रभु जी अब ना मेरी शादी की उम्र हो गई एक्चुअली, तो बस मैं विवाह कर लूं और फिर तो क्या है, फिर चलना चलना। तो कहते ठीक है, फिर विवाह के बाद आते हैं। विवाह के बाद आते हैं, देखते हैं कैलाश जी बहुत तेजी से ऐसे ऐसे हाथ मार रहे, तेज चल रहे। कहते क्या हो गया? अरे नाना जी ये तो टाइम अपना आ गया, ये क्या टाइम आ गया, मेरी वाइफ अंदर है आज, देखो मेरा, मैंने बच्चे का मुंह देखना है आज, तो मैं उसके बाद आऊंगा, ऐसे अभी मेरा टाइम मत करो। कहते कब आऊं? कहते थोड़े बाद आऊ, फिर बच्चा भी हो जाता है। फिर नारद जी आते, कहते चलो। कहते कमाल है, जिम्मेवार नहीं होती कुछ, कौन पालेगा इनको, आप ब्रह्मचारी हो, आपकी कोई संतान नहीं, लेकिन ये तो मेरे पास तो जिम्मेवारी है ना जी, इनके बड़े होने दो, इनको पैरों पे खड़ा कर दो, फिर मेरे पे क्या रह गया। कहते ओके। फिर दोबारा आए नारद मुनि जी। कहते अब चलो। कहते देखो हर पिता की एक इच्छा होती है कि अपने बच्चों की शादी कर ले, अपने पोते का मुंह देख ले, इतना सा करना, तो फिर तो 100% मैं आपके साथ चलूं। नारद जी फिर वापिस चले। फिर कुछ समय बाद वापिस आए, कैलाश कहते हाँ जी, कहते अब तो चलो, कहते क्या चलो, मार्केट इतनी डाउन है, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, इनकी कौन रक्षा, कौन सुरक्षा करेगा, तो मुझे इनके साथ रहना पड़ता है, जिम्मेवारी है। क्या क्या करूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद आऊँ, फिर वापस ले, फिर वापस आते हैं, फिर क्या देखते हैं, कैलाश कैलाश आवाजें मारते, कोई देखते नहीं, कोई सुनते ही नहीं, अचानक क्या देखते हैं, डॉगी भोंकता हुआ उनके पास आता है, कहते अभी तो अपनी दृष्टि को थोड़ा और वो करते हैं, ट्रांसेंडेंटल व्यू से देखते हैं, तो देखता रही तो कैलाश ही है, अरे कैलाश तू कुत्ते की बनी है, भोंक कर बताता कि हाँ हूँ, कहते तुम ये शरीर मिल गया, तुमने वो शरीर त्याग भी दिया, मैं थोड़ा लेट हो गया सॉरी, बट अब भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसे ले चलता हूँ, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वो अपनी भाषा बोलते, कहते क्या बात कर रहे हो, मैंने बताया नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, कोई चोरी कर ले, कोई कुछ कर ले, तो मुझे रखवाली करनी पड़ती है यहाँ की। तो इस प्रकार बेचारा कैलाश, फिर जब दोबारा आते हैं नारद मुनि, कहते हैं बस थोड़े से और बड़े हो जाए फिर तो चलो, उसके बाद पता चलता है कि वो सांप की योनि में चला गया, और फिर नारद जी को लगता है ये सुधरने वाला नहीं है, तो नारद जी उसके बेटे को बोलते तुम्हारे घर में सांप है, उसके बेटे खुद ही मार देते हैं उसको। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में इतनी अटैचमेंट्स हैं, इतनी जिम्मेवारी हमने डाल ली है कि जिम्मेवारी से बाहर निकल के राजी नहीं। नारद जी वापस गए भगवान के पास, कहते भगवान आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा सब लेकर आता हूं मैं किसी व्यक्ति को, मैं चलता हूं, देखे नहीं हो पाया हमसे। कहते हाँ, इस कंडीशन वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग, हर व्यक्ति जिस भी योनि में जाता है, एक कबूतर भी जिस भी योनि में जाता है उसको वो अपना परिवार परिवार लगता है। आप कभी किसी परिवार को देखिए, हम लोग यहाँ पर हैं, इनके अंदर भी इतना सेंस है संतान उत्पन्न करने का, बच्चों को बड़ा करने का, सब कुछ है। इवन ये लोग भी बच्चे के बड़े होने के बाद छोड़ देते हैं उनको कि जाओ खाओ कमाओ, तुम अपना देखो, भगवान बहुत ग्रेट है, वो तुम्हारा भरण पोषण कर लें। और हम लोग अपने घरों में अपने आप को भगवान समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे अलावा कौन है। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय जी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो इस प्रकार नारद जी विफल रहे। तो अगर ये सिचुएशन हमारे साथ हो, क्या कि नारद जी आ जाएं और बोलें कि हाँ जी आप में से कितने लोग तैयार हैं अभी भगवान के धाम वापिस जाने के लिए, तो कितने लोग हाथ खड़ा करें। अच्छा आप दरवाजा बंद होने की बात कर रहे हो, तो ये हाथ हमने खड़ा किया ना, मैं सच बताऊं हमारी सबकी स्थिति कैलाश वाली है। ये आधे घंटे में ब्रेन वॉश हो गया थोड़ा सा, तो लग रहा है कि हाँ हाथ खड़ा करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया ना, अगर पति ने किया तो पत्नी पीछे से घूर रही होगी, अच्छा आओ चलो घर में मैं बताती हूँ, अकेले अकेले जाओगे आप। और अगर वाइफ ने कर दिया होगा हाथ खड़ा, तो पति कह रहे अच्छा रोटी कहाँ कौन बनाए। तो इतनी अटैचमेंट्स हैं, इतनी ज्यादा बंधे हुए हैं कि हम सच में नहीं निकलना चाहते हैं, सच में नहीं चाहते। भगवान के धाम जाने की जो चाह है, बताते हैं अगर ऐसे हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो भगवान ऐसा वातावरण तैयार कर देते कि हम सच में भक्त बनते हैं और सारी चीजों को पूरा करते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान ऐसे वातावरण तैयार कर दे। अभी सच में हमारे अंदर लॉलियम, वो इंटेंस ग्रीड नहीं है भगवान के धाम जाने। अभी हमारे अंदर जो ग्रीड है वो किस लिए है, धन के लिए, ब्यूटी के लिए, फ्लैट के लिए ना, स्टडीज को लेकर, इन सब चीजों के पीछे हम लोग क्या है, पूरी तरह अटैच्ड। लेकिन जब ऐसी अटैचमेंट भगवान के लिए हो जाएगी, तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मतलब वो लाइफ हमारी लाइफ आखिरी दिन। तो मुश्किल नहीं है भक्ति करना, इट्स सो सिंपल। क्या करना है, केवल भक्तों के बीच में आ जाओ, समझ रहे हो, कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा, If we are meat eaters, no problem. Smokers, chain smokers, no problem. Drunkard like anything, हर तरह का brand पीते हैं, no problem. Whatever we are doing, चलने दो, आदत है ना, no problem. अरे ये तो society शुरू ऐसे लोगों से हुई है. एक से एक ये कर था इस movement में, एक से एक chain smoker था, चरस गांजा LSD लेते थे, महीनों महीनों नहीं आते थे. उन लोगों ने शुरू करी, प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के साथ बैठे थे. आप थोड़ा बहुत करते तो उसमें क्या बड़ी बात. ऐसे लोगों को प्रभुपाद जिन्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. इस सिंपल मेथड से तालियां बजवाई, मृदंग बजवाए, हरे कृष्णा चैंटिंग किया. वो लोग नाचते 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 में पता नहीं चला कब उनकी सिगरेट छूट गई, कब उनकी बोतल गायब हो गई, कल कब उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, कब उनके हेड शेव हो गए, कब वो लाल कपड़ों में आ गए, कब वो महाराज सन्यासी बन गए, कब उन्होंने 108 मंदिर खड़े कर दिए प्रभुपाद संघ मिलकर, कब उन्होंने 600 मंदिर खड़े कर डाले. आज वो इस पूरे मूवमेंट को चला रहे. ये वे लोग हैं पीने वाले खाने वाले. इतनी शक्ति है इस मंत्र के अंदर. बस उनके अंदर एक चीज थी, वो क्या, कि वो बदलना चाहते थे. हमारी समस्या क्या है कि हम बदलना नहीं चाहते, केवल इतना. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आई एम रेडी, बट आपकी तरफ से भी क्या चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए. आप ग्रीन सिग्नल दो, एक कदम बढ़ाओ, बाकी रेस्ट ऑफ द भगवान देख. तो इसलिए इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का, एक माला दो माला, वन शुड स्टार्ट विद. और इन ग्रंथों का अध्ययन करना जितना हो सके, एक पेज दो पेज चार पेज. तो अगर शुरू करेंगे तो आप खुद देखोगे कि अब आपके डाउट्स खत्म हो रहे हैं, चैंटिंग में आपको ब्लेस मिलना शुरू हो रहा है, और जो भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सुख और दुख से दूर होकर जा रहे हैं, तो वो ब्लेसफुल लाइफ. ठीक है, हरे कृष्ण. आप लोगों का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है? ओके, आप लोग अलग से पूछ सकते हैं, कराना चाहें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.